शांति। आज 4 अगस्त 2023, आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, मीठे मीठे लाडले बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की नई दुनिया स्थापन करने। इसलिए इस नर्क से दिल मत लगाओ, इनको भूलते जाओ। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी हम इन आंखों से देख रहे हैं, ये कुछ भी हमारे साथ चलने वाला नहीं। इनको यूज करो, परंतु यूज करते हुए बुद्धि में रहे कि ये अगले पल मेरे पास नहीं रहे तो मेरी अवस्था खराब नहीं। इस स्मृति को बढ़ाओ और जैसे जैसे ये स्मृति बढ़ती जाएगी, अंत समय किसी भी चीज को छोड़ते वक्त आपकी बुद्धि उसमें अटकेगी नहीं। प्रश्न, रहम दिल बाप तुम बच्चों पर किस रूप से कौन सा रहम करते हैं? रहम के सागर, रहम दिल बाप तुम बच्चों पर किस रूप से कौन सा रहम करते हैं? सारी दुनिया पुकारती आई है, रहम करो, दया करो। अब उनकी सोच हमारी सोच और बाबा के रहम में क्या अंतर है? अब तक हम समझते थे कि भगवान आएगा, हमारी बीमारियां ठीक करेगा, हमारी समस्याओं का समाधान करेगा, हम जो कहेंगे वो करेगा। बाबा कहते बच्चे, मैं बाप रूप से मीठी सैक्रीन बन तुम बच्चों को इतना प्यार देता हूं, इतना प्यार देता हूं जो दुनिया में दूसरा कोई भी दे ना सके। क्या प्यार देते हैं? अपने प्यार को बाबा हमें समझाते कि मैं तुम्हें पवित्र प्यार की दुनिया का मालिक बना देता। पवित्र प्यार देते हैं, इसका मतलब दुनिया में कहीं भी पवित्र प्यार नहीं है। तो कौन सा प्यार है? अपवित्र प्यार। शुद्ध प्यार अर्थात रूहानी प्यार, क्योंकि हमारा शुद्ध स्वमान, शुद्ध अहंकार है कि हम आत्मा हैं। ये सिवाय बात के आज तक ना कोई बता सका और ना बता सके। परमात्मा ने आकर हमें शुद्ध स्वमान दिया कि आप आत्मा हैं, और अशुद्ध अहंकार हमारे पास था कि हम देह हैं, और देह समझकर झूठी काया, झूठी माया और झूठे संसार से ही हम प्यार करते आए, और उम्मीद भी यही करते थे कि ये सब साधन, ये सब जो मेरे संबंधी हैं, झूठे संबंधी हैं, वो हमें भी प्यार करते। परंतु उससे हमारे जीवन में कोई खुशी, कोई सुख नहीं आया और ही ज्यादा दुख बढ़ते थे। तो अब बाबा आकर सच्चा पवित्र प्यार देते हैं, हम आत्माओं को प्यार करते, हमें अपना बच्चा बनाते हैं, कितना बड़ा नशा देते हैं कि तुम ईश्वरीय संतान हो। आज तक हम समझते आए कि हम उनके चरणों की धूल हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, दास हैं, गुलाम। बाप बनकर हमें पवित्र प्यार, जो अविनाशी प्यार है, वो बाबा हमें देते। फिर टीचर बन तुम्हें ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूं जो तुम्हें बहिष्ट की बीवी बना देता, स्वर्ग का मालिक बना देता। कितनी वंडरफुल बात है कि आज तक जो भी पढ़ाई मिली उसका लाभ इस जन्म में मिला या नहीं मिला, परंतु ये पढ़ाई है जिससे हम स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं। ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। ये ज्ञान रत्न तुम्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। जी, कौन है माता, कौन है पिता? ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ समझाया जाता है। ओम का अर्थ है आई एम, अहम, मैं आत्मा। मैं आत्मा निराकार परमात्मा की संतान हूं। शरीर का फादर वे जिसने शरीर बनाकर इस संसार में आने में सहयोग दिया, उनको कहा जाता है शरीर को जन्म देने वाले फादर, शरीर को बनाने में सहयोग देने वाले फादर। और शिव बाबा है आत्माओं का बाप, ये तो है ही है। ढेर के ढेर करोड़ों आत्माएं अपनी निराकारी दुनिया में रहती हैं, वहां सदैव निर्विकारी ही हैं। विकारी तो परम धाम में रह न सके। पहले तो ये बात पक्की करनी है, मैं आत्मा, मेरा बाप परम आत्मा। आत्मा के संबंधी सब आत्माएं भाई भाई हैं। इस शरीर के बाप को कहा जाता है लौकिक बाप, आत्मा के बाप को कहा जाता है पारलौकिक बाप, जो सभी का एक है। पुकारते भी है ना, ओ गॉड फादर, ओ पतित पावन, रहम दिल। ये आत्मा ने पुकारा बाप को। आत्मा इस शरीर के साथ दुखी है, किसलिए पुकारा? क्योंकि आत्मा इस शरीर के साथ दुखी है। फिर सतयुग में आत्मा को शरीर के साथ सुख है, इसलिए उसका नाम ही है सुख धाम, स्वर्ग। ये है नरक, गाया भी जाता है ना, दुख में सिमरण सब करें, सुख में करे ना कोई। याद करते हैं पतित पावन को, समझते हैं पतित पावन बाप ऊपर परम धाम में रहता है। गंगा को पतित पावनी नहीं कहेंगे, गंगा को तो इन आंखों से देखा जाता है, और निराकार बाप को या आत्मा को नहीं देखा जा सकता। जिसने पावन बनना है, जिसने पावन बनाना है, दोनों ही इन चर्म चक्षुओं के द्वारा नहीं देखे जा सकते। परम पिता, परम आत्मा, प्राण दाता जो दिव्य चक्षु विधाता है, प्राण दाता, प्राण अर्थात जीवन, दुनिया में आत्मा को प्राण कहा जाता है। आत्मा निकल जाती है तो कहते प्राण निकल गए, प्राण सांस को भी कह देते कि ये प्राण सांस का आना जाना रुक गया। एक्चुअल में प्राण का अर्थ है जीवन, क्योंकि इस शरीर का प्राण सांस जो है वो आ रहे हैं और जा रहे हैं, तब तक जीवन है। और आत्मा का प्राण है उमंग उत्साह। ब्राह्मण जीवन उमंग उत्साह, परमात्म संतान, ईश्वरीय संतान अर्थात आत्मा का श्वास है उमंग उत्साह। तो ये प्राण, ये उमंग उत्साह, ये जीवन स्वयं परमात्मा ही आकर सिखाते। तो आत्मा का प्राण उमंग उत्साह, शरीर का प्राण श्वासों का आना और जाना। उनको कहा जाता है ओ गॉड फादर, क्रिएटर। अच्छा, फिर मदर कहां से आई? अब मदर बिगर बाप सृष्टि की रचना कैसे रचे? मदर तो जरूर चाहिए ना। गॉड फादर मनुष्य सृष्टि का रचयिता है, वो है सबका बाप, फादर है तो मदर भी जरूर चाहिए। इस बात को दुनिया के शास्त्र लिखने वालों ने भी अनुभव किया कि परमात्मा को मां तो जरूर होगी, वैसे कैसे सृष्टि को रचेगा? तो उन्होंने देह भान में होने के कारण, देह अभिमान में होने के कारण देही आत्मा, देह वाली आत्मा, जिसका देह हो उसको उन्होंने पत्नी के रूप में, जगत अम्बा के रूप में दिखाया, जिससे सृष्टि को रचा, जिसे बाइबल की स्टोरी में ईव के रूप में, कुरान में बीबी के रूप में, मनुस्मृति के रूप में ईड़ा के रूप में उन्होंने दिखाया। पहले मनु ने श्रद्धा से ईड़ा को जन्म दिया, फिर ईड़ा से मानव को जन्म दिया। हर एक की दृष्टि वैसी रही। इसी प्रकार से जात ग्रंथों में वर्णन कर दिया उन्होंने कि परमात्मा ने जगत अम्बा से ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को रचा। अब परमपिता परमात्मा आकर सच्चाई सामने लाते कि फादर है तो मदर भी जरूर होगी। बाप आकर समझाते हैं मैं हूं निराकार, मैं हूं ही निराकार, मैं जब आऊं शादी करूं तब बच्चे होंगे, परंतु शादी तो करनी नहीं है। परमात्मा आकर शादी कहते करनी नहीं है, बच्चे पैदा करने हैं और शादी के बिगर करने हैं। अब बिगर शादी के तो एक ही तरीका रह जाता है कि मैं बच्चों को एडॉप्ट करूं, तो मैं आकर बच्चों को एडॉप्ट करता हूं। समझो कोई की स्त्री नहीं है, चाहते हैं कि अपनी मिल्कियत किसको देकर जाऊं। जबकि बाबा ने अपनी मिल्कियत तो देनी है, जाना नहीं है। ये भी वंडरफुल पार्ट है। मैंने बिना गए क्या देनी है, मिल्कियत देनी है। फिर मैं आकर धर्म के बच्चे एडॉप्ट करता हूं। एडॉप्ट करते हैं तो मां बाप दोनों ठहरे ना। शिव बाबा कहते कि मैं एडॉप्ट करता हूं तो मां बाप दोनों हुआ। तो बेहद का बाप कहते हैं कि मैं फादर हूं, मैं कैसे रचूं। ये समझ की बात है ना। तो बाप खुद आकर समझाते हैं, मुझे शरीर तो चाहिए, क्योंकि बिना शरीर के, बिना शरीर का आधार लिए मैं कैसे आपको अपना कहूं। आवाज वाणी नहीं हो सकती, तो वाणी के लिए, आपको अपना कहने के लिए मैं इनके तन का आधार लेता हूं। केवल कहने के लिए तो मैं अपना कहूं कैसे। तुम कहते हो हम ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर की संतान तो सब हैं, परंतु इस समय बाप का मुख आया हुआ है। तुम बच्चों को गोद में लेते हैं, तुम समझते हो हम बाबा के बच्चे बने हैं। बाप है स्वर्ग का रचयिता, स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए राज योग सिखलाते हैं, खुद बैठ बतलाते हैं। मैं निराकार गॉड फादर हूं। निराकार को मनुष्य सृष्टि का रचयिता कैसे कह सकते। उसका अपना कोई आकार नहीं तो वो इस सृष्टि को कैसे रचेगा। तो बच्चों को एडॉप्ट कर उन्हों को ही बैठ समझाते हैं, गाइड करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, विधि बताते हैं कि मैं शिव निराकार हूं, तुम भी निराकार आत्माएं हो, तुम गर्भ जेल में आते हो, मैं गर्भ जेल में नहीं आता हूं। तुम्हारे लिए आधा कल्प गर्भ महल और आधा कल्प है गर्भ जेल, और मैं ना गर्भ महल में आता हूं और ना मैं गर्भ जेल में आता हूं। आधा कल्प माया रावण पाप कराती है, उस पाप की सजा खाने के लिए आप गर्भ जेल में आते हो, और मैं आकर तुम्हें इन पापों से मुक्त होने की विधि सिखाता। सतयुग में माया होती नहीं, क्योंकि आप मेरी श्रीमत पर चलकर जो जो कमियां, जो जो अभाव, जो जो माया आप में आई थी, आप उससे मुक्त हो जाते, संपूर्ण बन जाते, माया निकल जाती है। माया है अज्ञानता, माया है अंधेरा, माया है अभाव, जिसके कारण आपके जीवन में अज्ञानता आती है। तो जब ज्ञान की रोशनी आपके जीवन में आती है तो अज्ञानता का अंधेरा आपके जीवन से निकल जाता है। इसलिए इसे कहा जाता है सतयुग में माया होती नहीं जो पतित दुखी बनाए, क्योंकि अज्ञानता के कारण दुखी हुए, पवित्रता के कारण अभाव के कारण पतित हुए, शांति के अभाव में अशांति आई, सुख के अभाव में दुख आया। अब मैं 21 जन्मों के लिए तुमको स्वर्ग का मालिक बना देता हूं। नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। मकान भी पुराना होता है तो पुराने को छोड़कर नए में जाते हैं, ये भी पुरानी दुनिया है और वो है नई गोल्डन एज, पावन दुनिया। तो बाप कहते हैं, लाडले बच्चे, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग स्थापन कर रहा हूं, तुम फिर नर्क से दिल क्यों लगाते हो? अब नर्क को भूल जाओ, मुझ बाप और स्वर्ग जो तुम्हें वर्षा मिलना है इसको याद करो। बाप को याद करना अर्थात बाप की श्रीमत पर चलना। जब बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग है आपका लक्ष्य, वर्षा जिसको प्राप्त करने के लिए आपने बाप की श्रीमत पर चलना है। तभी ज्ञान प्रकाश में आप श्रेष्ठ कर्म करके अपने लिए स्वयं स्वर्ग बनाते। मैं स्वर्ग नहीं बनाता हूं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग बनाने की विधि देता हूं। हर एक आत्मा अपने लिए स्वर्ग स्वयं बनाती है। पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, यह है बेहद का संन्यास। पुरानी देह सहित जो कुछ भी देखते हो उनका भी ममत्व छोड़ो। जो कुछ भी इन आंखों से दिखाई देता है उससे ममत्व छोड़ो, अर्थात उसे यूज करते हुए, उसे प्रयोग करते हुए बुद्धि में स्मृति रहे कि इनका मैंने प्रयोग ड्रामा अनुसार जितना समय करना है उसके 1 सेकंड अधिक मैं इसे प्रयोग नहीं कर सकता। ये बात बैठकर स्वयं को बार बार अच्छी तरह समझाने और फिर सारा दिन उनके जाने का चेक करना है। जब वो वस्तु मेरे पास नहीं या चली जाती है या मैं उसे उपयोग नहीं कर पाता हूं तो कोई संकल्प तो नहीं चलता। संकल्प चलता है तो बैठकर मन मना भाव करना है, अपने आप को समझाना है क्या हुआ। जब मैंने उसे प्रयोग करना नहीं, अब उसे किसी और ने प्रयोग करना है तो वो करेगा ना। तो एकदम न्यारे और प्यारे बनने की विधि मिलेगी, और जैसे न्यारे होंगे तो बाप समान ऑटोमेटिक प्यारे भी बने। बाप समान न्यारे बनेंगे तो बाप समान प्यारे भी बने। न्यारे बनो, प्यारे तो बन जाओ। वंडरफुल विधि है। न्यारे बनने का पुरुषार्थ करना है, प्यारे तो बन जाए। समझो, हम सब ईश्वर को देते, समझो हम सब कुछ किसको दे दिया? ईश्वर को दे दिया, वर्ल्ड ड्रामा के डायरेक्टर को दे दिया। क्यों? क्योंकि अब इसे जिसने जिसने प्रयोग करना है वो इसे प्रयोग कर सके। ये शरीर, ये धन दौलत, ये बच्चे, जो कुछ भी मैं मेरा मेरा कहता हूं, ये सब खत्म हो जाने वाले। ये वही मां भारी मां भारत लड़ाई है, जिसके द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट खुलने हैं। मुक्ति अर्थात इस संसार से अपना हिसाब किताब बराबर करके, लेना देना बराबर करके घर जाना, और जीवन मुक्ति अर्थात अकर्म का खाता बनाकर स्वर्ग में जाना। हरि का द्वार कहते हैं ना, हरि कहा जाता है श्री कृष्ण को, और उनका द्वार है वैकुंठ। वैकुंठ के गेट बाप आकर खोलते। ये लाइन सुनकर ऐसे लगता है कि उसके कोई बड़े बड़े गेट होंगे और परमात्मा आकर खोले। परमात्मा स्थूल गेट नहीं खोलते, परमात्मा आकर आत्माओं को उस निराकारी दुनिया में जाने की विधि सिखाते, रास्ता दिखाते हैं। और इस देश न्यारा निराकार स्मृति वाला, उस परम धाम की स्मृति वाला, परम अवस्था में रहने वाला बनाते। जब तक निराकार अवस्था, परम अवस्था, निर्वाण अवस्था में नहीं पहुंचेंगे, तब तक परम धाम जा नहीं सकते। और बिना परम धाम गए वैकुंठ में नहीं जा सकते। इस देह में रहते हुए ये वंडरफुल बात परमपिता परमात्मा समझाते, इस देह में रहते हुए परम अवस्था में जा सकते। कब? जब एक बच्चे की तरह एक एक डायरेक्शन मेरी मान कर चलते। जब आपको संकल्प नहीं करना पड़ता, जो बाबा ने कहा वो मुझे करना है, अपनी बुद्धि नहीं चलानी पड़े, क्योंकि जब संकल्प करना पड़ता है तो परम अवस्था से बाहर हो जाते। इसलिए बाबा ने अपनी परम अवस्था को समझाया, मैं बल यहां हूं, मैं बल ब्रह्मा के तन के द्वारा तुम्हें पढ़ा रहा हूं। ये नोट करने वाली बात है, मुझे संकल्प नहीं करना पड़ता कि मैं क्या बताऊं, ना पहले संकल्प करना पड़ता है, ना पढ़ाते वक्त संकल्प करना पड़ता, मुझे कभी संकल्प नहीं करना पड़ता। ऑटोमेटिक जो जिस पल मैंने बताना है वो उसी पल बताता, उसके लिए मुझे सोचना नहीं पड़ता। इस ब्रह्मा बाबा को सोचना पड़ता है, मम्मा को सोचना पड़ता है, आपको संकल्प करना पड़ता है कि क्या बोलूं, क्या करूं। मुझे नहीं, मैं इस तन का आधार लेते हुए तन के प्रभाव से न्यारा रहता, इस मुख का प्रयोग करते हुए मुझे ये संकल्प नहीं करना पड़ता कि इसके मुख के किस पार से मैं इस हवा को चलाऊं, वाणी बनाऊं। इस तन के द्वारा ऑटोमेटिक, जैसे आप हैबिचुअल हो कि आपको कब होठ हिलाने हैं, कब जीभ हिलानी है, कब गले का प्रयोग करना है, कब इसमें श्वास छोड़ना है, कब नाक के द्वारा ध्वनि में परिवर्तन कैसे लाना है, कैसे शब्द बनाने हैं, ये भी संकल्प तुम्हें नहीं करना पड़ता क्योंकि आप हैबिचुअल हो, ऐसे मुझे भी नहीं करना पड़ता। ये मेरे रोल में है, मैंने कब कैसे क्या करना, कितना और कितना और कैसे इस शरीर को प्रयोग करना। जब आप केवल और केवल मेरी श्रीमत पर बिना सोचे चलते हैं तो आप परम अवस्था में, और यदि एक भी संकल्प किया तो आप परम अवस्था से बाहर। देह में रहते परम अवस्था में जाने की विधि ये वंडरफुल। और जब तक हमारे अंदर देह के प्रति आकर्षण है, संसार की किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षण है, तो बाबा की श्रीमत से बाहर हम इस आकर्षण में हैं तो पतित हैं, और पतित जा नहीं सकते तो बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं, दुख से लिब्रेट करते हैं, और कोई लिबरेट कर ना सके। दुख हरता सुख करता बाप ही है। बाप कहते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं, सदा के लिए सुख देने आया हूं, मैं तुम्हारे लिए वैकुंठ हथेली पर लाया हूं। वैकुंठ हथेली पर लाना अर्थात सहज देना। तुम राजयोग सीखकर मनुष्य से देवता बनते। बुद्धि भी कहती है कि बरोबर समझ की बात है। समझो, ये पुरानी दुनिया फिर ये नहीं बनेगी। सर्वशक्तिमान बाप एक है, जो अपनी शक्ति से स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। चाहते भी हैं एक राज्य हो, ऑल माइटी अथॉरिटी राज्य हो। तो सतयुग त्रेता में अटल अखंड सुख शांति में देवी देवताओं की राजधानी थी। कोई विघ्न नहीं था। उनको अद्वैत राज्य कहा जाता है। दूसरा धर्म ही नहीं जो दुखी बने। अब देखो, बल्कि क्रिश्चियन एक ही धर्म के हैं तो भी उनकी आपस में बहुत लड़ाई होती। क्यों? क्योंकि माया का राज्य है। सतयुग में माया होती नहीं। अभी कहते हैं, ओ गॉड फादर रहम करो। बाप कहते रहम तो सब पर करूंगा। रहम तो सब पर करूंगा। सारी आत्माएं मुझे पुकार रही हैं, रहम करो। सब बच्चों को पापों से मुक्त करता हूं, विधि सिखाता हूं जिससे पाप मुक्त होते हैं। मैं केवल केवल ज्ञान देने का काम करता हूं। परंतु पुरुषार्थ हर आत्मा को स्वयं करना, अर्थात पतित दुनिया से लिबरेट करता हूं, लिबरेट करने की विधि देता हूं। तुम सब आत्माओं को ले जाता हूं निराकार दुनिया में। बाकी शरीर तो सब भस्म हो जाएंगे। नेचुरल कैलोमिटीज गाई हुई हैं, आसार भी देख रहे हो। फैमन पड़ना जरूर है, फैमन पड़ना जरूर है। सारी दुनिया खत्म होनी है। अब बाप कहते हैं, इस छीछी दुनिया से ममत्व तोड़ो। बेहद का बाप है सैक्रीन। कहते हैं, मैं जो तुमको प्यार करता हूं तो कोई कर ना सके। अभी तुमको पवित्र दुनिया का मालिक बनाता हूं। राजाई के लिए तुम पढ़ रहे हो। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है, नया तो कोई समझ ना सके। जब तक कि कोई बैठ उनको समझाए, एक हफ्ता बैठ समझें कि मनुष्य से देवता बनना है। इसलिए बाप को जादूगर कहा जाता है। ज्ञान रत्नों से मनुष्य को देवता बनाता हूं। उनको रत्नागर, सौदागर, मुसाफिर भी कहते हैं। तुमको आकर स्वर्ग की महारानी मां राजा बनाते हैं। मुसाफिर कितना हसीन है, कितना सुंदर है, तुम जो कोई काम के नहीं थे, अब तुमको पढ़ाकर बहिष्ट की बीवी बनाता हूं, मालिक बनाता हूं। तुम जानते हो हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनने के लिए पढ़ रहे। बाबा कहते मैं तो पढ़ाता हूं एक ही पढ़ाई, मैं तो आकर बनाता हूं तुम्हें ब्राह्मण, परंतु तुम अपने पुरुषार्थ अनुसार या तो सूर्यवंशी बनते हो या फिर चंद्रवंशी। तुम यहां क्या पढ़ते हो? अब बाबा पूछे कि तुम यहां क्या पढ़ते हो? तुम कहेंगे, वो भी जवाब भी अपने आप दे रहे हैं, तुम कहेंगे मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे। क्यों? क्योंकि ये आसुरी गुणों वाली मनुष्य सृष्टि विनाश होने वाली है। कैसे भी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण ना ही, आप से ही तरस पड़ो। तो वही रहम दिल बाप बैठकर तुमको पढ़ाते हैं, सभी धर्मों वाले एक निराकार बाप को ही परमात्मा मानेंगे। किसी देहधारी को तो परमात्मा नहीं मानेंगे ना। देहधारी को कोई मानेगा, किसी दूसरे देहधारी को दूसरे मानेंगे, देहधारियों के तो मानने की बात ही अलग है, क्योंकि जानते तो है ही नहीं, क्योंकि माना उसे जाता है जिसको जानते नहीं। मानने की जरूरत ही तब पड़े, जो होता नहीं उसे माना जाता है, जो होता है वो तो है, उसे मानने की जरूरत नहीं रहती। जैसे कहा गया, मानो तो भगवान है नहीं तो पत्थर है। क्योंकि भगवान हो तो उसे मानने की जरूरत नहीं। जैसे आपके पास आपके पिताजी बैठे हों, आपको कहे कि मान लो ये पिताजी हैं, तो कहेंगे क्यों, ये मेरे पिताजी। परंतु आपके पिताजी की उम्र के कोई बुजुर्ग बैठे हों, तो आप कहेंगे मान लो कि ये आपके पिताजी हैं, ठीक है मान लेते हैं। अपने पिताजी को पिता नहीं मानेंगे, वो तो हैं, वह तो जो नहीं है उससे माना जाता है। एक निराकार बाप को ही परमात्मा मानेंगे, सभी सभी मानेंगे। जब पहले जाने मनुष्य भल गॉड फादर कहते हैं, परंतु जानते नहीं कि वे कौन है, कहां आते हैं। अभी तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया में आते हैं, क्योंकि पावन दुनिया स्थापन करते हैं, नई दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं। नई दुनिया में तो सुख ही सुख है। बाबा कहते हैं कि नई दुनिया स्थापन करने कल्प कल्प मुझे आना ही है। ये तो बुद्धि समझती है कि रात के बाद है दिन, फिर चक्र में कलयुग आता है, कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर होगा ना। तुम बच्चों को कहा ही जाता है स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा जानती है मैं 84 जन्म कैसे लेती हूं। कोई मनुष्य मनुष्य को सदगति दे नहीं सकता, मैं ही आकर समझाता हूं कि कैसे तुम पावन बनो, सद्गति के अधिकारी बनो, योग बल से तुम विश्व पर जीत पाते। योग बल याद है ना, योग बल अर्थात बाबा की श्री मत पर चलने के अनुभव। जितना जितना बाबा की श्री मत पर चलने के अनुभवी बनते जाएंगे, शक्ति बढ़ती जाएगी, एक्सपर्ट होते जाएंगे। इसे योग बल कहा जाता है। तुम विश्व पर जीत पाते हो। बाप है सर्वशक्तिमान, बाप से तुमको बेहद का वर्षा मिलता है, बेहद अर्थात संपूर्ण, जिसके बाद कुछ बचा ही नहीं। आकाश, पृथ्वी, सागर आदि सब तुम्हारा हो जाएगा। यहां तो देखो, आकाश पर भी हद, पानी पर भी हद लगी है ना। कहते हमारी पानी के अंदर तुम नहीं आओ, तुम तो वहां सारे विश्व पर राज्य करते हो ना। स्वर्ग तो फिर क्या, स्वर्ग को भूल नहीं सकते, स्वर्ग तो क्या, स्वर्ग को भूल नहीं सकते। मनुष्य जब मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग है कहां? जरूर नरक है ना। ये है हेल, सब मनुष्य दुखी हैं, सब पतित हैं। ये राज्य ही रावण का है, जिसको जलाते रहते हैं परंतु जलता ही नहीं, परंतु जलता ही नहीं। रावण को 100 फुट लंबा बनाते, 100 फुट लंबा बनाते रहते हैं, दिन प्रतिदिन लंबा करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि पाप बढ़ते जा रहे हैं, परंतु समझते नहीं। ये समझ की बात है, ये समझ की बात है। यहां देखो, मुरली चलती है तो फिर टेप में भरी जाती है। क्यों? क्योंकि गोपिकाएं मुरली बिगड़ रह ना सके, तो ये प्रबंध है। मुरली बिगड़ तो तड़पते हैं, क्योंकि ये मुरली ही जीवन हीरे जैसा बनाने वाली है। जहां बाबा पढ़ाते हैं, जो मुरली फिर लंदन अमेरिका तक जाती है ना, बच्चे सुनकर बहुत खुश होते हैं। गाया हुआ है गोपिकाएं मुरली बिगर रह नहीं सकती थी। ये नॉलेज गॉड फादर ही सुनाते हैं। मुख्य एक बात समझानी है कि ये हमारा बेहद का बाप, इनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। आत्मा कहती है मेरा बाप परम आत्मा है, वो आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। ऐसा और कोई कह ना सके, और कोई ऐसा कह नहीं सकता कि मैं परम आत्मा तुम आत्माओं को पढ़ाता हूं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि मैं परम आत्मा नॉलेजफुल हूं। कोई भी देहधारी कभी भी परम आत्मा नहीं हो सकता, नॉलेजफुल नहीं हो सकता। तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाया जाता है, परंतु सबकी बुद्धि एक रस तो नहीं होती है। कोई की सतो प्रधान बुद्धि है, कोई की सतो रजो तमो। इसमें टीचर क्या करेंगे? टीचर कहेंगे पढ़ाई पर पूरा अटेंशन नहीं देते थे, गॉड फादर है नॉलेजफुल। जैसे टीचर नॉलेजफुल है, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, आप समान बनाते हैं, वैसे इस सृष्टि चक्र की नॉलेज गॉड फादर के पास ही है और कोई नहीं जानते, और कोई नहीं जानते। बाप ही नॉलेज सिखलाए, नॉलेजफुल बनाते हैं। बाप है नॉलेजफुल सबसे ऊंचते ऊंच, ऊंचा जिसका नाम, ऊंचा जिसका ठाम। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतनवासी, उन्हें परमात्मा नहीं कह सकते। थर्ड ग्रेड में हैं मनुष्य, मनुष्यों में भी ग्रेड हैं। सत्युग में मनुष्यों की ग्रेड बड़ी ऊंची रहती है। तुम गोल्डन एज में जाते हो, आयरन एज खत्म हो जाएगा। गोल्डन एज है तो सिल्वर एज नहीं, और सिल्वर एज है तो कॉपर एज नहीं, कॉपर एज है तो आयरन एज नहीं, और आयरन एज है तो गोल्डन एज नहीं। संगम पर दो एज एक साथ होती हैं, इसलिए उसे संगम कहते हैं। एक है आयरन एज, दूसरी तरफ है गोल्डन एज। ये है दो युगों का, सॉरी दो कल्पों का संगम। इसे दो युगों का संगम भी कह देते हैं, परंतु वास्तव में ये है दो कल्प का संगम। ये सब बातें बुद्धि में रखनी है, इसलिए चित्र बनवाए हैं। सत्युग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, कलयुग में तो ढेर के ढेर मनुष्य हैं। पूछते हैं बाबा विनाश कब होगा? विनाश तब होगा जब नाटक पूरा होगा। ये नाटक पूरा तब होगा ये बाबा नहीं बताते। सब चले जाएंगे। बाबा है मुक्ति, जीवन मुक्ति का गाइड, रास्ता दिखाने वाला, और वो रहते हैं परम धाम में, अर्थात परम अवस्था में। उन्हें संकल्प भी नहीं आता, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हर एक्ट एक्यूरेट होनी है। दुनिया की घड़ियां आगे पीछे हो सकती हैं, परंतु परम धाम की घड़ी कभी भी आगे पीछे। हर आत्मा एक्टिवेट चलती, सबकी घड़ी एक ही। वो रहते परम धाम में, तुम भी वहां के रहने वाले हो, यहां आए हो पार्ट बजाने। बाप कहते हैं बच्चे तुम माया पर जीत पानी है, इसमें हिंसा की कोई बात नहीं। सत्युग में हिंसा होती नहीं, वहां है ही संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताएं। अच्छा अच्छा मीठे मीठे छिपकी लड़े बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर एक, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। पुरानी देश सहित जो कुछ इन आंखों से देखते हो उनसे ममत्व निकाल देना है। बाप और स्वर्ग को याद करना है। नंबर दो, पढ़ाई को अच्छी रीति धारण कर बुद्धि को सतो प्रधान बनाना है। मुरली ही पढ़ाई है। इस मुरली पर बहुत बहुत ध्यान देना है। वरदान, भाग्य की नई स्मृतियों द्वारा पुरुषार्थ में रमणीकता का अनुभव करने वाले मन दुरुस्त भव। भाग्य की क्या क्या मुझे सतयुग में मिलने वाला है और उन स्मृतियों में रहकर पुरुषार्थ में क्या आएगी, रमणीकता आनंद आएगा। वो अनुभव करेंगे तो आपका मन दुरुस्त हो जाएगा और जब मन दुरुस्त होगा तो तन भी दुरुस्त ऑटोमेटिक हो जाएगा। ब्राह्मण जीवन में लास्ट जन्म होने के कारण शरीर से चाहे कितने भी कमजोर या बीमार हैं लेकिन मन सबका दुरुस्त है। उमंग उत्साह से उड़ने वाला है पावरफुल मन की निशानी। सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाए। इसके लिए सदा अपने भाग्य के गीत गाते उड़ते रहो। अमृत वेले से भाग्य की नई नई बातें स्मृति में ला। कभी किसी प्राप्ति को सामने रखो कभी किसी प्राप्ति को तो पुरुषार्थ में रमणीकता आ जाएगी। बोर नहीं होंगे नवीनता का अनुभव करेंगे। स्लोगन है, आगे पीछे सोच समझ कर हर कर्म करो तो सफलता प्राप्त होगी। आगे पीछे बाबा कहते त्रिकालदर्शी, मैं आकर तुम्हें त्रिकालदर्शी बनाता हूं। त्रिकालदर्शी आत्मा की पहचान या विशेषता है कि वो अपना हर कर्म बाबा की श्री मत पर करेगी। क्योंकि वर्तमान में मैं जो करूंगा वही मैंने भूतकाल में किया था और वही मैं भविष्य में भी करूंगा। तो ये त्रिकालदर्शी बनकर जब कर्म करते हैं तो फिर सफलता प्राप्त होती ही रहेगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।